Now listening 11:39.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो 11:39.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज हमारे साथ में गोधुली में अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग क्षेत्र के हमारे बीच में मेहमान आते हैं जो अपने कार्यक्षेत्र के बारे में अपने बारे में बताते हैं, जिनसे हमको न जाने कितनी सारी चीजें देखने को जानने को समझने को मिलती है। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में एक और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, तो हम बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना हम बता दें कि आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि ओनर हैं प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय के। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में जिसका नाम है गोधुली।
थैंक यू नंद जी,
थैंक यू सो मच जट साहब। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई आप डॉक्टर हैं, आपसे आपकी पद्धति के बारे में आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें होनी है और बहुत अहम बातें होनी है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना एक परिचय दें ताकि हमारे श्रोताओं को पता चल सके कि आप कौन हैं।
मेरा नाम डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी है, मैं यहीं गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा के पास ही एक छोटा सा विलेज है चांदपुर, वहीं का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा भी गोंडा में ही हुई है। मैं यहीं आपके पड़ोस में GIC का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर्नाटका के पास शिमोगा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता वहाँ बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से की है। और गोंडा में मेरा एक छोटा सा आयुर्वेदिक क्लिनिक है प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नाम से।
जी, ये आपने अपना परिचय दिया, हम जानना चाहेंगे आपके माता पिता के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में।
मेरे पिताजी गोंडा डीजल से रेलवे में ही एक कर्मचारी थे, अभी रिटायर्ड हैं। माता जी हाउसवाइफ हैं, दो भाई दो बहन हैं। मेरा छोटा भाई जो है, मेरा एक हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, वो ओन करता है, वो देखता है वहीं, और मैं यहाँ हूँ जैसा जानते हैं। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो टीचर है प्राइमरी स्कूल में, और छोटी सिस्टर हाउसवाइफ है।
ओके, ये तो बड़ा अच्छी बात आपने बताई और लगता है कि यहाँ एक छोटी और शॉर्ट सुखी फैमिली के बारे में आपने बताया। बचपन कैसा बीता आपका?
गांव में रहा चुकी तो जैसा गांव के सभी लड़कों का बचपन बीतता है वैसा ही बीता, कुछ स्पेशल नहीं रहा ऐसा। घर पे रहना, खेती का काम करना और साथ में पढ़ाई करना, ये सारी चीजें जीवन के साथ जुड़ी रही। तो मैं अभी कह सकता हूँ कि मैं अपनी जमीन के साथ काफी जुड़ा हुआ हूँ और आज भी इसी शायद यही वजह है कि मैं अपने गाँव को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, आज भी मैं वहीं रहता हूँ।
क्या बात है। और कहते भी हैं कि जो लोग भाई अपने गाँव से जुड़े हुए होते हैं वो हमेशा ही उसकी मिट्टी उनको सौंधी।
हाँ, मुझे लगता है कि वो सुकून कोई और जगह दे नहीं पाती है जो हमारा गांव हमें देता है।
क्या बात है, थैंक यू सो मच। अभी आप हमको ये बताइए कि आपने पढ़ाई की, गोंडा से शुरुआती पढ़ाई आपकी हुई, उसके बाद आप कर्नाटका चले गए आयुर्वेदिक डिग्री प्राप्त करने के लिए। आपके जहन में ये कैसे आया कि आपको डॉक्टर ही बनना है?
कुछ स्पेशल तो ऐसा विचार नहीं था, पर कुछ रिलेटिव्स और सबसे लोगों से मिला, बातचीत हुई। उस समय बड़ी उत्सुकता होती है जब हम 12th पास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ रिलेटिव्स कुछ लोगों से मिला, उनसे मिलने की वजह से ही जो है हमारा जो है डॉक्टरी की तरफ बढ़ा। तो उस समय मुझे ये भी नहीं पता था आयुर्वेद एलोपैथ में क्या डिफरेंस है। धीरे धीरे पढ़ाई के दौरान मैंने एलोपैथी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, MD हैं, MBBS हैं, उनसे बातचीत हुई। चूंकि मेरा हॉस्पिटल भी है तो वहाँ भी काफ़ी डॉक्टरों से मुलाकात हुई। काफ़ी चीज़ें देखने और जानने के बाद में मुझे लगा कि आयुर्वेद जो है वो उसकी आवश्यकता है आज हमारे समाज में, आज हमें ज़रूरत है आयुर्वेद की। क्योंकि बीमारियों का इलाज तो हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मॉडर्न ट्रीटमेंट में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज अवेलेबल है, पर हमें स्वस्थ कैसे रहना है वो हमें नहीं पता चल पा रहा। वो हमें आयुर्वेद ही बता सकता है कि हमें बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है।
ओके, तो आप तो अभी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए काम कर ही रहे हैं।
बिल्कुल,
जानना ये चाहेंगे कि क्या बचपन से ही आपके घर में भी ऐसा ही माहौल था चीज़ों को लेके कि आयुर्वेदिक चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, या कैसे क्या होता था?
नहीं, सामान्य परिवार जैसा होता है, हम वैसे ही थे, गांव से जुड़े थे, खेती किसानी था। मुख्य पापा ही एक गवर्नमेंट जॉब में थे, बाकी हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि खेती और पशुपालन ही था, जो नॉर्मली एक औसत भारतीय परिवार किसान परिवार में होता है। मेरा जीवन भी वैसे ही गुजरा, कुछ स्पेशल नहीं था।
डॉक्टर साहब, वैसे जहाँ तक हम जानते हैं कि ऐसे घरों में ज़्यादातर ये जो कहते हैं होम रेमेडीज़, घरेलू इलाज, इसको प्रायोरिटी दी जाती है। चोट लगने पे हल्दी का लेप बांधना है या कहाँ पे कड़वे तेल का इस्तेमाल करना है, ये सब बड़ा अभी भी है। क्या अभी भी गांव में इस तरह का माहौल है कि पहले चीज़ों को डॉक्टर के पास ना जाके पहले घर पे ही देखा जाता है क्या ऐसी चीज़ है जिससे इलाज किया जा सके?
इस विषय में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई अलग से नहीं आया, ये हमारा आयुर्वेद है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे कुछ हम मॉडर्न होते गए, कुछ भ्रांतियाँ फैलती गईं, कुछ अपने ही पैथी से हम दूर होते गए। तो जो हम हमारे जुकाम होते ही हमारी माँ हमें अदरक और हल्दी का वो पिला देती हैं दूध में डाल के और हमारा जुकाम हमें आराम हो जाता है, वो कुछ अलग से नहीं आए, वो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, हमारा आयुर्वेद ही है। पर क्या हुआ, हम उनसे अनजान हो गए। हमारे कुछ गाँव के कुछ बुजुर्ग अभी उन पैथियों को जिंदा रखे हुए हैं, उन्हें बचाए हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग से आया है, वो सब कुछ आयुर्वेद है, हमारे जीवन में जितना कुछ जुड़ा हुआ है। इवन अगर आप रात को कुछ ऐसा खाने लगते हैं, गलत खाने लगते हैं, तो आपकी दादी, आपकी नानी आज भी आपको टोक देती हैं कि ऐसा मत खाओ नहीं बीमार हो जाएंगे। तो क्या उन्होंने कोई डिग्री ले रखी डॉक्टरी की? उन्होंने कोई डिग्री नहीं ले रखी, उन्होंने उन्हें ये सारी चीज़ें पता है, क्योंकि आयुर्वेद हमारे जीवन सा हुआ करता था। आज हम थोड़ा सा उससे दूर हुए हैं, या कह सकते हैं हम भटक गए हैं, पर हम पूर्णतया उससे भटक नहीं, दूर नहीं रह पाएंगे, हमें उसके पास जाना पड़ेगा।
ओके, तो अगर आपने इतनी ही तारीफ कर दी है आयुर्वेद की, तो फिर अब हमको और हमारे श्रोताओं को ये जरूर बताएं कि आयुर्वेद है क्या।
देखिए, आयुर्वेद के बारे में वैसे एक्सप्लेन, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इतना हम कह सकते हैं कि सुख दुख और आयु के लिए हितकर और अहितकर विषयों का मापदंड जहाँ बताया गया है वही आयुर्वेद है। हमारे लिए सुखकारी क्या है, दुखकारी क्या है, हमारे आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, ये जहां पर भी बताया गया है वही आयुर्वेद है।
ओके, आपने कहा सुख दुख में जो भी हितकर बताया गया है, वही आयुर्वेद है।
हाँ।
ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या है।
देखिए, आयुर्वेद का अगर मूल सिद्धांत की हम बात करते हैं तो एक संस्कृत का छोटा सा श्लोक है जो लिखा गया है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस से विकार प्रशमनम चा। इसका मतलब ये होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए सबसे पहले, उसके बाद जो बीमार हैं उनका इलाज किया जाए। अर्थात आयुर्वेद ये चाहता है कि लोग बीमार ही न पड़े, जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ ही रहे। तो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही है कि व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए, फिर जो बीमार होते हैं उनका इलाज कैसे किया जाए।
तो जो मान लीजिए जो स्वस्थ है तो उनका फिर इलाज, या कह सकते हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैसे क्या क्या होता है?
हाँ, वही हमारी जैसे दिनचर्या होती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। आयुर्वेद में तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजन, ऋतु अनुसार भोजन, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तृत एक्सप्लेन किया गया है।
जी,
शुरुआत में जो भी हमारे आयुर्वेद, जैसे हमारा अष्टांग हृदय है, तो उसका उसकी शुरुआत ही होती है दिनचर्या से, कि हमें कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना क्या पीना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना पीना चाहिए। तो आयुर्वेद तो बहुत विस्तृत इस चीज को बताता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकता है।
बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अगला हमारा क्वेश्चन ये भी है कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, अगर आयुर्वेद को देखें तो।
जैसे मैंने बताया कि आपके आयु के लिए और सुख के लिए क्या हितकर है, आयुर्वेद में बताया गया है। तो अगर हमें सुखी रहना है और स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद आवश्यक है।
अगर हमें स्वस्थ रहना और सुखी रहना है
तो बिना आयुर्वेद के संभव नहीं है।
ओके, चलिए ये तो आपने बता दिया। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है बाकी पैथियों में और आयुर्वेद में।
हाँ, देखिए बाकी पैथियों के बारे में ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद ऐसी पद्धति है, ऐसी चिकित्सा है जिसमें आपको अपने चिकित्सा के लिए कुछ भी बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, जो भी आपके डेली यूज़ की सामग्री है, उसी से आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में हल्दी भी होती है, हमारे घर में सौंठ भी होती है। अगर हमें जुकाम होता है तो हम हल्दी काली मिर्च का काढ़ा बना के हमारी माताएं आज भी हमें पिलाती हैं और हमें आराम मिलता है। कहीं चोट लग जाती है तो तेल गरम करके मालिश कर लगा दिया जाता है और हमें आराम मिल जाता है। तो कहने का मतलब है आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जिसके लिए आपको कुछ बाहर से नहीं ढूंढना, जो आपके पास अवेलेबल है उसी से आपकी चीज। जैसे गाँव में कहते हैं कि फोड़ा हो गया है, पस पड़ गया है, तो नीम की पत्ती ले उबाल के धुल दो। तो कहने का मतलब है कुछ आपको बाहर से ढूंढना नहीं है, कुछ आपको फैक्ट्री में तैयार नहीं करना। आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल है आप उसी से अपनी चिकित्सा कर सकते हैं।
ओके, तो आपने कहा कि जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके घर की बात हो या आपके आसपास की बात हो।
बिल्कुल।
तो डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आया कि आखिर अलग कैसे है, लेकिन सारी चीजों में ऐसा देखा जाता है जब कुछ इमरजेंसी होती है या बहुत पेन बढ़ जाता है तो लोग एलोपैथ की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो जल्दी आराम देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जल्दी आराम देता है तो उस तरह से उसके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेद को प्रेफर किया जाता है कि आयुर्वेद अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म कोई चीज़ चल सकती है तो, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे गिल्टी की प्रॉब्लम है, गांठ जो पड़ जाती है, उसका एक अच्छा इलाज होता है। दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, जो बीमारियाँ जैसे शुगर और बीपी की ये कॉमन बीमारियाँ होती हैं, इसमें कितना रोल अदा होता है आयुर्वेद का?
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी पैथी है, जैसे एलोपैथी या आयुर्वेद है, इन दोनों का एक मुख्य उद्देश्य जो है हमें स्वस्थ रखना है।
बिल्कुल।
तो दोनों के अपने अपने लाभ फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। जैसे एलोपैथ का नुकसान है कि लंबे समय तक उसका साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही आयुर्वेद में कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए हमारे पास पेन किलर नहीं है, या ऐसा कई सारी चीज़ें होती है जिसमें हम अब भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, तो हम उसमें ना पढ़ के थोड़ा सा बाहर रह के हम ये बात करेंगे कि हर पैथी की अपनी गुणवत्ता होती है। एलोपैथ की अपनी गुणवत्ता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े रिसर्च है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास ऐसी हैं जिससे हमें चिकित्सा करने में बड़ी सुविधा मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों को मिला के अगर कोई चिकित्सा की जाती है, अगर कोई पेशेंट है जिसको जोड़ों का दर्द है और बहुत भयंकर दर्द है, तो उसको एक पेन किलर अगर दिया गया है किसी डॉक्टर द्वारा, उसने खा लिया, उसे आराम हो गया, लंबे समय के लिए उसे ठीक करने के लिए अगर वो आयुर्वेदिक चिकित्सा करता है, तो हो सकता है, संभावना इस चीज़ की भी रहती है कि उसका घुटने का दर्द परमानेंट ठीक हो जाए बिना किसी दर्द की दवा के, उसे दर्द की दवा का सेवन परमानेंट नहीं करना पड़ेगा, और वो जो लंबे समय तक इलाज करवाएगा उसका उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं झेलना पड़ेगा। यह आयुर्वेद का फायदा है। लेकिन एलोपैथ का फायदा यह है कि अगर इमीडिएट उसको किसी तरीके का बहुत सीवियर पेन है तो वो इमीडिएट उसमें आराम पा सकता है एलोपैथ में। आयुर्वेद में इंजेक्शन जैसी अभी चीजें अवेलेबल नहीं है।
ओके, तो ये तो आपने बताया कि कुछ जैसे नुकसान ये होते हैं कि भाई इमीडिएट फौरन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है।
हाँ,
आयुर्वेद की साइड से क्या और भी साइड इफेक्ट्स वगैरह का भी खतरा इसमें रहता है?
देखिए, आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है, पर आयुर्वेद का नुकसान, आयुर्वेद में नुकसान अगर आप सही दवा नहीं लेंगे, सही समय से नहीं लेंगे, तो उसका नुकसान होता है।
क्या हो सकता है नुकसान?
जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर किसी को बहुत सीवियर एसिडिटी है और वो खट्टा दही खा लेगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये हमारे भोजन की बात हुई, अगर हम गलत तरीके से भोजन भी करते हैं ना तो हमें नुकसान करता है। इसी तरह से अगर हम गलत तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिंस भी लेते हैं वो भी हमें नुकसान करती है। हाँ, लॉन्ग टर्म तक अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिंस लेते हैं तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप किसी डॉक्टर से, ढंग के डॉक्टर से लेते हैं। अभी आजकल हमें बहुत बार ये देखने को मिलता है कि लोग आयुर्वेद के, लोगों का जो आयुर्वेद पे भरोसा है उसका बहुत सारे ठग, मतलब आयुर्वेद में एक वर्ड आया है छद्मचर वैद्य, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया है, लेकिन वो वैद्य बन के लोगों की चिकित्सा करते हैं। तो क्या होता, उनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो वो क्या होता, उनका एक ही उद्देश्य होता है लोगों को ठगना और पैसे कमाना, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा मिला के, कोई भी दवाइयां मिला के, कुछ भी करके लोगों को दर्द का, घुटनों के दर्द का इलाज कराते। बहुत सारे पेशेंट मुझे ऐसे मिले हैं जो किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज करा के आए, बाद में उन्हें ढेर सारा साइड इफेक्ट हो, किडनी फेलियर हुआ, चेहरे पे सूजन थी, या बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो लोगों का आयुर्वेद के प्रति भरोसा है उसका गलत लाभ भी समाज में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं।
हाँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है मार्केट में जब आप जाते हैं तो कोई साइकिल पे बेच रहा है,
हाँ,
कोई
हाँ,
तंबू
हाँ,
लगा के साइड में बेच रहा है, और बहुत सारे दिक्कतों का निवारण बताते हैं।
बिल्कुल, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीजों पे थोड़ा सा नियंत्रण करे वो, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो बना रहना चाहिए आयुर्वेद पे। क्योंकि हम जैसे अच्छे डॉक्टर जब किसी अच्छे व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते हैं कि हम आपके घुटने का दर्द का इलाज करेंगे, तो हमसे कहता है कि नहीं नहीं यार, हमारे पड़ोसी ने तो कराया था, उसका तो घुटना फेल हो गया, पर वो ये नहीं कहता कि उन्होंने किससे कराया था, या वो ये जानता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद बदनाम होता है ऐसे ठगों के चक्कर में।
ओके, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि भाई हर पैथी में जैसे उसका फायदा होता है,
बिल्कुल,
लेकिन उसी तरह कुछ ठग भी ऐसे होते हैं जो उसका भरोसा
गलत उपयोग करते हैं
और लोग उस झांसे में आने के बाद कहीं ना कहीं उनका विश्वास सही पद्धति से भी हटने लग जाता है। तो ये जागरूकता की भी कमी है और कहीं ना कहीं सिस्टम को इस पे थोड़ा और ध्यान।
कभी भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो ऐसे डॉक्टर के पास ही, पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है और जिसकी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से, एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है, जिसने डिग्री की है, वो कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता, वो किसी भी पैथी का हो, पर उसकी कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है और जो उसके मन में, दिमाग में बस जाती है, उससे भाग नहीं सकता।
बिल्कुल सही बात है कि भाई जिस भी पैथी के डॉक्टर हो उनकी अपने एक समाज के लिए जिम्मेदारी होती है,
और हर पैथी के डॉक्टरों ने समाज की सेवा की है समय समय के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी उनका रहा वो सभी ने बहुत समाज की सेवा की अपने अनुसार।
बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ में चूंकि अब हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया, श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा। बहुत सारे अभी अहम सवाल हैं बाकी, जिसको सुनने के बाद आपको काफी कुछ समझने को जानने को मिलने वाला है, इसलिए कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे, इलाही मेरा दिया है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका, अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो 91.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर से, जिसमें हम काफी ज्यादा अहम मुद्दों पर बात कर रहे हैं आयुर्वेद को लेकर। डॉक्टर साहब, जाने से पहले काफी सारी बातें हुई जो हमारे और आपके सभी के जीवन में काफी ज्यादा पता होना उसको जरूरी होता है, जानकारी होनी चाहिए। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन एक और आ रहा है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद इतना पुराना बताया जाता है कि सालों साल कई हजार साल पुरानी पद्धति है, क्या आज भी, क्योंकि देखा जाता है कि फायदा करता है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है जबकि समय के साथ चीजें चेंज की जाती हैं, अपडेट होते हैं। तो आज भी कैसे इतने रिलेवेंट है, कितनी बीमारियों में ये काम आ जाती दवाएं?
देखो, आयुर्वेद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी एक आदमी ने लिख दिया हो या किसी एक आदमी ने बता दिया हो, ये सालों साल रिसर्च का परिणाम है। हमारे ऋषियों ने बहुत गहरी शोध इस पर की है, किस तरह से की है उस पर तो सोच पाना आज मुश्किल है। आज मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा
जी,
कि जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि अगर किसी को खून की कमी होती है, एनीमिया होती है, तो उसको लोहासो देना चाहिए, यानी आयरन कंटेंट देना चाहिए। लौह भस्म होता है लोहासो में, आयरन कंटेंट देना चाहिए। आज मॉडर्न साइंस इतनी मॉडर्न होने के बाद, इतनी सारी रिसर्च के बाद, सब कुछ होने के बाद में आज हम जानते हैं कि मॉडर्न में भी, मॉडर्न जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है हमारा, उसमें भी अगर किसी को एनीमिया होती है तो उसे आयरन देते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कहते हैं 2000 साल पुराने ग्रंथ हैं हमारे, तो उस समय ना हमारे पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट हुआ करते थे, ना कोई मॉडर्न रिसर्च हुआ करती थी। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे जो भी हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने किस तरह से इसकी खोज की होगी, कितनी रिसर्च की होगी, उसके बाद इस चीज़ को लिखा।
बिल्कुल,
तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ आयुर्वेद में जो भी बताई गई है वो हमारे शरीर को और उस चीज़, जो भी चीज़ हमारे खाने पीने वाली चीज़ है या जो भी चीज़ दवा में यूज़ होती है, उसके बारे में अच्छे से जान के, समझ के, उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव सब चीज़ों के समझ के तभी बताया गया है। मतलब हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयों को आप लंबे समय तक यूज़ करते रहें, जो भी इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बताया गया है ग्रंथों में, उसके अलावा शायद ही आपको कोई और देखने को मिले। इतना okay. ज्यादा प्रामाणिकता है इस आयुर्वेद की
जी। तो ये तो आपने बताया कि 2000 साल पुरानी पद्धति बताई जाती है और आज भी रेलेवेंट है, लेकिन फिर एक सवाल जहन में उठता है,
बिल्कुल,
कि अगर आखिर ये इतनी कारगर पद्धति है और बिना नुकसान पहुंचाए इतना ज्यादा हमको फायदा देती है, स्लो प्रोसेस होता है, तो फिर आज के टाइम में ये पद्धति खोती क्यों जा रही है? आज लोग बाकी पद्धतियों की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है, इससे हटते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं आयुर्वेद के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रीजन थे, हम 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें रहीं, तो कहीं ना कहीं हम लोग वही चीज़ उपयोग करने लगे या उन्हीं चीज़ों का सेवन करने लगे जो उनके द्वारा हम पर थोपा गया। हम अपनी मूल संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें जो है मिस करते गए, खोते गए, आयुर्वेद भी उन्हीं में से है। पर हमने आयुर्वेद को पूर्णतया खो दिया ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आयुर्वेद आज भी हर घर के, हर माँ में, हर नानी में, हर दादी में आज भी जिंदा है। आप छोटी छोटी चीज, आप ठंडी में दही खाओगे तो आपके घर में कोई बुजुर्ग हुई टोक देगी, मत खाओ जुकाम हो जाएगा।
सही
तो
है।
ये कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद जो उनके मन में जिंदा है ना, वही उनसे कहलवाता है, कुछ अलग सा नहीं है ये।
बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं देखा ये जाता है कि लोग जिसे प्रेफर करते हैं डॉक्टर के पास फौरन जाते हैं एलोपैथ का इलाज, क्योंकि उनको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए होता है। जैसा कि अभी हमारी आपकी बात भी हुई थी कि लोगों को जल्दी फायदा चाहिए होता है, लेकिन उस चक्कर में कहीं ना कहीं ऑर्गन्स पे भी बुरा असर पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी रिसर्च है कि जहां बताया जाता है कि अंग्रेजी दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से बुरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किडनी हो या बाकी ऑर्गन्स हो। लेकिन आपने कहा कि ये टाइम टेकिंग तो होता है बट बेनिफिट देता है, तो हम एक साथ ये भी चीज एक बार जानना चाहेंगे कि आखिर किन किन रोगों के लिए ज्यादा बेस्ट इलाज इसमें है, हम टाइम भी दे सकते हैं और बाद में हो सकता है ये पूरी तरह से सही भी कर दें।
देखो, इसको मैं दो तीन तरीके से आपको बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट एलोपैथ या जो भी है, जिस भी पैथी, हर पैथी में होता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है और आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने आपको एक पेन किलर दे दिया, आपको दर्द से आराम मिल गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप ठीक हो गए
जी।
आपको ठीक होने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और कुछ दिन तक चलेगा वो।
बिल्कुल,
तो ये कहना कि सिर्फ आयुर्वेद ही टाइम टेकिंग है ऐसा सही नहीं है, सारी पैथी टाइम टेकिंग है। आयुर्वेद में हम जोड़ों के दर्द का इलाज करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि दुष्परिणाम ना हो उसके। अगर आप 6 महीने दवा खाते हो तो अगर आप घुटने का दर्द ठीक करवाने आए और किडनी भी आपकी फेल हो गई, तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा किसी भी पैथी के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ नहीं करते, या हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो मूल पर्पस होता है, वो जो डिजीज़ है वो पूर्णतया समाप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको आज आराम मिला है, कल फिर से आपको वही प्रॉब्लम हो गई, या फिर से आपको आराम मिला, इलाज करवाया, 2-4-10 दिन आप ठीक रहे, फिर आपको समस्या होने लगी, वो ना हो। अगर आप एक बार ढंग से, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं, जो समस्या है उसका पूर्णतया समाधान हो जाए।
ओके,
हाँ,
मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपर टाइम देना
हर पैथी में, हर पैथी के लिए ये आवश्यक है। कोई भी पैथी ऐसा नहीं कह सकती कि वो दो खुराक दवा में, भाई अगर किसी को बुखार आता है वो एक डोलो खा लेता है उसका बुखार उतर जाता है, पर बुखार ठीक नहीं हो जाता। बुखार ठीक होने में तो जो 5-6 दिन का निश्चित टाइम है वो लगेगा,
यानी एक नेचुरल टाइम तो जो लगना है वो लगना
लगता है। हम बुखार को कम कर सकते हैं पर बुखार को ठीक नहीं कर सकते एक दिन में एक खुराक में।
बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही जैसे कि अभी लास्ट हमने अभी क्वेश्चन किया था आपसे कि इतनी पुरानी पद्धति है, तो जैसे सभी चीजों में चेंज आया है तो हम जानना चाहेंगे क्या आयुर्वेद में भी कुछ चेंजेस आए हैं, क्या टाइम टू टाइम रिसर्चेस हुई हैं और कितनी आवश्यकता है इसमें और रिसर्चेस की।
अब रिसर्च की आवश्यकता, देखो रिसर्च की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहती है हर चीज़ में, जैसे जैसे हमारा स्वभाव बदलता है हमारी चीज़। जैसे पहले क्या होता था कि आयुर्वेद में चूर्ण दिया जाता था, चटनी दी जाती थी, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, हम टेबलेट और कैप्सूल्स पे आ रहे हैं, हम जो आसो अरिस्ट है उनको भी थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं कि लोगों को लेने में सुविधा हो। आज आदमी को अगर आप 3 ग्राम चूर्ण सुबह 3 तरह का और 3 ग्राम चूर्ण रात को 3 तरह का देने की कोशिश करें तो वो नहीं खाएगा या नहीं खा पाएगा या उसे तमाम तरह की समस्या होगी। तो वो आदमी आजकल कैप्सूल और टेबलेट्स में ज़्यादा भरोसा करने लगा है। तो हम भी इस आयुर्वेद को धीरे धीरे करके इस तरह से मॉडर्न कर रहे हैं कि लोगों को दवाइयाँ लेने में असुविधा ना हो। वो जिस तरह से और किसी पैथी की दवाई लेता है उसी तरह सेम उसी तरह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले सके, उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स ना हो दवाइयाँ लेने में।
जी ये तो आपने कहा कि ये आप मॉडिफाइड कर रहे हैं।
हाँ
हम जानना ही चाहेंगे कि कोई जैसे ट्रीटमेंट की जहाँ बात आती है तो ट्रीटमेंट में भी कोई क्या फ़र्क आया है कि पहले आप दवाओं को कुछ इस तरह देखते थे अभी कुछ अलग तरह से देखते हैं, या कुछ चीज़ों को और ऐड किया जाता है कि नहीं इसमें ये चीज़ की कमी होने पर इन चीज़ों को भी ऐड करके आफ्टर कोई रिसर्च के।
देखो ट्रीटमेंट में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद परफेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, मैं और नहीं कह सकता।
ओके
पर डायग्नोसिस में फर्क आया है, तमाम तरह के मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ और खून की जांचें हुई, एक्सरे हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं। तो डायग्नोसिस में तो डिफरेंस आया है, थोड़ा सा हम डायग्नोस करना इजी हो गया है आज के समय में, पर ट्रीटमेंट मुझे लगता है कि लगभग वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं आया है। Okay. और कारगर है, पूर्णतः कारगर है। इस विषय में मैं पूर्णतः विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही कारगर है।
ठीक है, ये तो आपने कहा कि बहुत ही कारगर है। एक बात जहन में बहुत टाइम से आ रही है, अब सोच रहा हूँ कि पूछ ही लूँ आपसे।
बिल्कुल,
कि आप डॉक्टर हैं, आपने पढ़ाई की है आयुर्वेदिक की, इसके साथ ही हमारे ही शहर में या कहीं भी चले जाइए बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे बाबा होते हैं जो इसका इलाज करते हैं, तो फिर कोई भी शख्स आपके ही पास क्यों आए?
हाँ बिल्कुल, ये सही सवाल आपका है। मैंने इस शुरुआत में ही इसका जवाब दिया था कि एक व्यक्ति है जो जिसने पढ़ाई की है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, तो उस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता, उस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि उसकी एक बाध्यता है समाज के प्रति, वो गलत नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार की नज़रों में है। ऐसे लोग जिनकी कोई डिग्री नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दवाई या हो सकता है बहुत अच्छा इलाज करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर विश्वसनीयता के मामले में अगर मुझे इलाज कराना हो तो सामने वाले की विश्वसनीयता किस वजह से है वो मैं ढूंढना चाहूंगा।
कोई पैरामीटर तो होगा। हाँ, जाहिर सी बात।
तो अगर वो किसी पैरामीटर्स को पूरा करता है आपके, कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज है, इसने ऐसा ऐसा किया था, कई लोग कहते हैं कि उनके दवा में बहुत फायदा है, तो फायदा तो मतलब कोई भी लेमैन दे सकता है, और कोई दवा अच्छी है या बुरी है उसका डिसीजन मेरे ख्याल से लेने के लिए एक योग्यता चाहिए कि किस दवा, कोई दवा फायदा करती है या कोई दवा नुकसान करती है, वो डिसीजन लेने के लिए एक विशेष योग्यता होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे कोई रिसर्चर है वो बताएगा कि ये दवा खाने से फ़ायदा होता है हमें, या इस दवा खाने से तुरंत तो फ़ायदा होता है लेकिन कुछ समय के बाद में नुकसान होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर लोगों को और पहले से ज़्यादा बीमार कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे पास ही आए, पर मेरे कहने का मतलब ये ज़रूर है कि वो देखे कि जिस व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रमाणिक है, वो ऐसा है कि उसकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है, वो गलत ना हो, वो ठग ना हो, वो लोगों को मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भ्रमित ना कर रहा हो।
करेक्ट। हाँ, और मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रीटमेंट करने वालों के साथ ही दिक्कत नहीं है, यानी ये सिर्फ ठग अगर जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इलाज करने वाले के रूप में ही नहीं बल्कि ये कंपनीज के रूप में कैसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ तेल हुआ, कुछ ऐसे चीज़ें बना बना के चूरन को, बहुत सारी ऐसी दावे किए जाते हैं कि फला बीमारी में एकदम तरीका है।
देखो हमारे हम कुछ भी कहें कि आयुर्वेद हमारे यहाँ से लुप्त हो गया है या हम आयुर्वेद से दूर चले गए हैं, पर हमारे मन में हमारे जहन में आयुर्वेद के प्रति जो एक भरोसा है ना वो अभी भी बना हुआ है, और उस भरोसे का फ़ायदा उठाने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तीन दिन पहले, कि कम से कम 30-40 ऐसी दवाइयाँ थी जिनको सरकार ने बैन किया, नुकसान वो मतलब प्रतिबंधित चीज़ों को मिक्स करके दवाइयाँ बना रहे थे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी पढ़े, जैसे आपका सवाल था कि आपके पास ही क्यों आए, तो मेरे पास अगर कोई आएगा और मैं कोई दवा किसी पेशेंट को लिखूंगा तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं उसके बारे में जानता हूं कि नहीं जानता हूं। तो कोई डॉक्टर या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आपको कोई दवाई देगा तो वो ज़रूर उसकी
जांच कर लेगा
कि वो कितना अच्छी है, कैसे है, आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं है, क्या है। कोई भी डॉक्टर गलत दवा नहीं लिखेगा, वो किसी भी पैथी का हो
जी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो बाकी अदर जिनकी बात हमने की, वैद्य जो बाबा कहलाते हैं, वो आप पड़ताल तो नहीं करते हैं, वो सबको बस एक कॉमन दवा उठा के दे देते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम होती है। हो सकता हो हम और आप एक ही चीज़ के पेशेंट हो लेकिन बॉडी टाइप अलग होता है, हो सकता है एक के साथ हमारे साथ दूसरी बीमारी हो, तो उसके लिहाज से दवा थोड़ा सा और चेंज होनी चाहिए।
मैं इस विषय में थोड़ा सा और क्लियर करूंगा कि आयुर्वेद में तो ये कहा जाता है कि अगर किसी को फीवर है तो फीवर के तीन कॉज होते हैं, तीन सिम्टम्स होते हैं, मूलतया तीन दोष बताए जाते हैं, वात और पित्त और कफ आयुर्वेद में। तो फीवर भी वातज हो सकता है, पित्तज हो सकता है, कफज हो सकता है, और तीनों का डिफरेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब अगर वातज फीवर है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कफज में नहीं होगा, और जो कफज फीवर है उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो वातज में नहीं होगा। तो सभी को एक तरह की दवाई देके ठीक करना ये आयुर्वेद में संभव नहीं है
जी।
अगर सभी को एक दवा बता दी जाए कि ये दवाई है, ये सारे बुखार में काम करती, तो ऐसा आयुर्वेद में संभव नहीं है। आयुर्वेद में हर बीमारी को बहुत बारीकी से परख कर देख कर तभी उसका इलाज किया जाता है
जी, जैसे बाकी अदर पैथीज में भी होता है। हाँ। और ये एक सही तरीका भी है।
बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बता दें हमारे श्रोताओं को कि ये वायु पित्त कफ होता क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग।
आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ये तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और इन तीनों से ही हमारे शरीर की रचना होती है। अगर ये तीनों साम्य अवस्था में होते हैं, जितना शरीर में होना चाहिए, तो हम आरोग्य होते हैं, और अगर इनमें विषमता आ जाती, जितना होना चाहिए उससे घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो उसी स्थिति को बीमारी कहते हैं।
ओके,
इन तीनों की विषमता ही बीमारी है
जी। तो आपने कहा कि अगर जैसे ये बैलेंस अगर है तब तो ठीक है, अगर इससे घटे या इससे बढ़े तो फिर दिक्कत आती है।
बिल्कुल,
और फिर ट्रीटमेंट के लिए इंसान आता है। हाँ। इसी के साथ चूंकि अब हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया है, आएंगे तो आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक जीवन कैसा होना चाहिए किसी भी मनुष्य का, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है, लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।
आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी।
समझ कर कोई आवाज दे रहा है।
तुमने मुझे अपना समझा ही कब? तुम तो मुझे दुश्मन समझते हो।
तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी, अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी।
मेरी जान, मेरी दर्दे मोहब्बत का कुछ ख्याल करो,
सब कुछ भुला दो, ये दर्द मोहब्बत भी मिटा दो।
हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं लेकिन, हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं लेकिन, ये रोग पुराना है जरा देर लगेगी, ये रोग पुराना है जरा देर लगेगी।
ये रोमानी अंदाज छोड़ो, जो कहना वो कह डालो।
ये बात नहीं वो के मैं आते ही सुना दूं, ये बात नहीं वो के मैं आते ही सुना दूं। सीने से हाय सीने से लगाना है जरा देर लगेगी, सीने से लगाना है जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, ओ जरा देर लगेगी, ओ जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी, ओ जरा देर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है गोधुली। नाउ यू लिसनिंग ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर से। सर, जाने से पहले अभी हमने आपसे और श्रोताओं से कहा था कि आने के बाद हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस विषय में विस्तार से हमारे श्रोताओं से बताइए।
हाँ जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा और मुझे इस बारे में तो जरूर ही बात करनी चाहिए अगर हम आयुर्वेद पे बात कर रहे हैं।
बिल्कुल,
देखिए स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद कहता है कि जो हमारे तीन दोष होते हैं वात पित्त कफ, इनका साम्य होना जरूरी है और इनको साम्य अवस्था में रखने के लिए मुख्य रूप से दो तीन चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। पहला तो होता है आहार, हम भोजन क्या करते हैं। दूसरा होता है विहार, विहार का मतलब हम कह सकते हैं कि हम हमारी दैनिक क्रियाकलाप क्या है
जी।
सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, व्यायाम, सब कुछ विहार में आता है। और तीसरा होता है हमारी मानसिक अवस्था, हम कैसे हैं, हम दुखी हैं, हम खुश हैं, हम कैसे हैं। ये तीनों चीज़ जो है आपके दोषों को साम्य अवस्था में रखने में मदद। तो सबसे पहले हम आते हैं आहार पे। जो हमारा आहार, हमारा भोजन है, कुछ चीज़ें हैं जो वात बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पित्त बढ़ाती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कफ को बढ़ाती हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कफ प्रकोपित है और वो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करेगा तो उसको बीमारी होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आयुर्वेद का एक सिद्धांत ये भी है, आयुर्वेद ये भी कहता है कि जो भी शरीर में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसका मुख्य अधिष्ठान होता है हमारी अग्नि, हमारा पेट, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है। कहते हैं अगर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है तो ही आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होगी, तो ही आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, या तो ही आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कार्डियक, मतलब एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पेट है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो मुख्य केंद्र है हमें स्वस्थ रखने का। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें किस समय क्या भोजन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रात को दही खाते हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, या रात को हम बहुत हैवी डाइट लेते हैं, या रात को हम बहुत देर से खाते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। रात को हमेशा सुपाच्य और हल्का भोजन लेना चाहिए, दिन में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आयुर्वेद की ब्रेकफास्ट जैसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, दोपहर सुबह का भोजन और शाम का भोजन।
अच्छा, दो ही भोजन की बात,
दो भोजन की बात, और जो शाम का भोजन है उसका समय 5 से 6 बजे के सूर्यास्त से पहले होना चाहिए।
ओके,
मतलब देर रात को खाने जैसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब हम सुबह भोजन करते हैं, 8-9 बजे हमने खाना खाया और 5-6 बजे फिर हमने खाना खा लिया, रात को हम लिक्विड पानी, दूध या कुछ ऐसा ले सकते हैं। यही चीज, मतलब 80% समस्याएं तो मुझे लगता है यही चीज समाप्त कर देती है। दूसरा, हम भोजन में क्या खाते हैं, बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें खाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बताएं कि घी, कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो तलने वाली चीज़ें बनाई जाती थी कुछ समय पहले, आज के बहुत ज़्यादा पहले नहीं, मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले, वो देसी घी में ही बनती थी या सरसों के तेल में बनती थी।
जी,
देसी घी एक ऐसी चीज़ है, आप कभी अपने घर पे भी अजमा के देख सकते हैं कि एक दिन आप रिफाइंड या डालडा से पूड़ी बना के खाएं, आप देखेंगे आपको इंडाइजेशन होगा, एसिडिटी होगी, सारी समस्या होगी। दूसरे दिन वही पूड़ी आप देसी घी में बनाकर खाएं, आप देखेंगे आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी और आपका डाइजेशन पहले से अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि घी जो है वो पित्त शामक और अग्निवर्धक है, यानी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाला है। आप कभी भी आपको एसिडिटी हो रही है, आप थोड़ा सा घी खा के देखो, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि चिकित्सा जो है वो करने के लिए कुछ अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो भोजन है वही हमारी चिकित्सा है। हमें कब खाना है और क्या खाना है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें चिकित्सा के लिए कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, बिहार जैसे हुआ, बिहार में जैसे कहते हैं कफ वृद्धि, अगर कोई व्यक्ति है वो भोजन करने के तुरंत बाद सो जाता है दिन में, तो उसको इंडाइजेशन हो जाएगा, उठने के बाद उसका पेट भारी भारी रहेगा, सर दर्द होगा, थोड़ा सा सर भारी भारी सा रहेगा, क्योंकि दिन में सोने से कफ प्रकोपित होता है, कफ प्रकोपित होगा तो अग्नि को मंद करेगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा उसको। अगर कोई आदमी रात्रि जागरण करता है उससे क्या होता है, वात प्रकोपित होता है। आप स्वयं पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप एक रात पूरी रात जागो, आप देखो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पैरों में दर्द होगा, सर भारी भारी सा रहेगा, शरीर में झंझनाहट सी होगी, आपका पूरा मतलब वात के जितने शरीर में ड्राइनेस हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सोचो कि अगर आप रात को जागते हैं तो आप सुबह अपने शरीर में ड्राइनेस फील कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि आयुर्वेद में जो भी सिम्टम्स और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन पे बहुत गहरी रिसर्च की गई है, ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनको सुन के या थोड़ा सा जान के बता, हमारे शरीर के बारे में बहुत गहरी रिसर्च करके तभी हमारे आहार और विहार का निर्धारण किया गया है। आयुर्वेद में दिन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, दिनचर्या और ऋतुचर्या दोनों बताया गया है। ये भी बताया गया है कि किस ऋतु में किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम में लगभग सभी का डाइजेशन वीक हो जाता है, पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं, लोगों को गैस्ट्राइटिस जैसे होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस मौसम में आयुर्वेद के अनुसार हमें हल्का भोजन लेना चाहिए। लेकिन हमारा चूंकि अब ऐसा समय हो गया कि सबके पास स्टोर होता है सारा राशन, पहले समय होता था कि लोग खेत से पैदा होता था वही खाते थे, अब क्या है कि हमारे पास सब कुछ स्टोर होता है, दाल है, चावल है, आटा है, सारी चीज़ें हमारे पास होती है। तो हमारा जो भोजन है वो एक रूटीन बन गया, दाल चावल रोटी सब्जी हम परमानेंट खाते हैं, या पूड़ी पराठा जो भी हम खाते हैं अभी वो परमानेंट खाते हैं। इस वजह से हमें हमारी पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी, पाइल्स जो है, लोग पाइल्स का, मुझे बहुत सारे लोग मिले कि सर हम पाइल्स की दवा खा रहे हैं लेकिन पाइल्स ठीक नहीं हो रहा। पाइल्स अलग से कोई बीमारी नहीं है, पाइल्स इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाला बदलाव है शरीर का, ये कह सकते हैं। मतलब अगर आपका डाइजेशन फिट है, तो कभी पाइल्स जैसी समस्या नहीं होगी। अगर आपका डाइजेशन फिट है तो शायद ही घुटनों का दर्द हो। अगर आपका डाइजेशन फिट है, माइग्रेन जैसी समस्या, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या, ये सारी समस्या अपने आप ही धीरे धीरे सेटल्ड हो जाएंगी अगर आपका डाइजेशन फिट है।
जी, तो मतलब आपने ये बताया कि एक तो खाने का वक्त निर्धारित होना चाहिए,
बिल्कुल।
दूसरी चीज है जैसे विहार के बारे में आपने बताया,
बिल्कुल, कि जैसे व्यायाम जैसे है, व्यायाम के बारे में हम आज के समय में हम जिम जाते हैं, परमानेंट एक्सरसाइज करते हैं, खूब अच्छे से करते हैं, पर आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें सर्दियों में, जो सर्दी का मौसम है, उसमें खूब अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब हमारी शक्ति का आधा, जितना हमारी टोटल शक्ति है उसकी आधी शक्ति हमें व्यायाम में खर्च कर सकते हैं हम सर्दियों के महीने में। गर्मियों में अपने शक्ति का एक चौथाई हम खर्च कर सकते हैं व्यायाम में, और बारिश में हमें बिल्कुल व्यायाम नहीं करना चाहिए, कोई भी बहुत हैवी एक्सरसाइज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी अग्निमांद होती है। अगर हम ज़्यादा व्यायाम करेंगे हमें ज़्यादा भूख लगेगी, लेकिन हमारी अग्नि डाइजेशन वीक है, हम उतना जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें समस्या उत्पन्न होने लगेगी।
वाह, मतलब सीजन भी आपको ध्यान, कौन से सीजन में कितना क्या करना है,
क्या खाना है, क्या करना है, दोनों चीजें।
और आपके अकॉर्डिंग आपने कहा कि अगर इन चीजों को समय अनुसार कर लिया जाए तो 80% बीमारियां तो वैसी दूर हो जाएंगी।
मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम अपने खाने पे ध्यान रख लें, अपने डाइजेशन पे, तो 80% बीमारियां दूर हो जाएंगी, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। समय से खाएं और उचित, जो हमारे लिए उचित है वो खाएं। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे खाने के लिए क्या उचित है, हर व्यक्ति को पता है कि उसे क्या नुकसान करता है और क्या उसके लिए उचित है। हम जानबूझ के नुकसान करने वाली चीजें स्वाद के लिए खाते हैं। किसी आप पूछ लो कि आपके लिए क्या नुकसानदायक है, वो सारी चीजें बता सकता है, क्योंकि हमारे मूल से आयुर्वेद जुड़ा हुआ है। ये भी एक एग्जाम्पल है कि आयुर्वेद से हम अलग नहीं हो पाए आज तक भी।
सही बात है। हाँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वाद और स्वास्थ्य में कई लोग स्वाद को प्रायोरिटी देते हैं तो कई लोग स्वास्थ्य को देते हैं,
बिल्कुल,
और उसका परिणाम सामने दिखने को आ ही जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में हम आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे, एक अहम बात होती है फूड कॉम्बिनेशन की, कि क्या खाना है, किस चीज़ के साथ क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जब एक साथ दो ऐसी चीज़ों को खाया जाता है जो विषम होती है, तो उससे कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है,
बिल्कुल,
उसके बारे में।
बिल्कुल, मैं बताऊंगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे उसको आयुर्वेद में कहा गया विरुद्ध आहार, मतलब दो चीज़ें ऐसी जिनको साथ में मिला के खाने से आपको फ़ायदा नहीं नुकसान होगा, उन्हें विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे शहद और घृत, ये दोनों हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, पर अगर दोनों को सम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके खाया जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक है, जहर जैसे होता है, मतलब एलर्जिक होती है। मछली और दूध या दूध में नमक, ये विरुद्ध आहार है। और हम कह सकते हैं कबूतर का मांस सरसों के तेल में, इसे विरुद्ध आहार बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार। शराब पीने के बाद में दूध पीना विरुद्ध आहार बताया गया है। बहुत लोग कच्चे अंडे को दूध में मिला के खाते हैं, ये भी विरुद्ध आहार है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो विरुद्ध आहार के अंतर्गत आती है। कुछ चीज़ों को हम आज के समय में पालन कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ों से दूर रह सकते हैं और कुछ चीज़ों से नहीं रह सकते हैं।
जैसे
पनीर, अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखा जाए तो पनीर भी विरुद्ध आहार है।
किसके साथ?
पनीर की सब्जी।
ओके,
विरुद्ध आहार है लेकिन हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन पनीर हम खा सकते हैं पर उसकी सब्जी बना के नहीं खा सकते, कच्चा पनीर हम खा सकते हैं।
अच्छा, लेकिन इसमें भी क्या डॉक्टर साहब कुछ कम और ज्यादा का है? जैसे एक चीज तो है कि कुछ भी आपने एक बार में लिया तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया, पनीर का आपने एग्जांपल दिया, तो क्या मतलब कुछ चीजें चलाऊ हो जाती है क्या?
ऐसा नहीं है, विरुद्ध आहार जो भी है वो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत खाओगे जानलेवा हो जाएगी
जी,
पर आप लंबे समय तक जब उसका उपयोग करेंगे तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। लंबे समय जब आप उसको रेगुलर यूज करते रहेंगे तो आपको उसका दुष्प्रभाव दिखना चालू होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक डोज लेंगे और आपको समस्या होने लगेगी।
ओके, यानी टाइम टेकिंग ये भी है।
हाँ हाँ, बिल्कुल, लंबे समय तक जब आप विरुद्ध आहार का सेवन करेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न होगी, बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी
जी। तो हमारे ख्याल से हमारे श्रोताओं को ये विरुद्ध आहार के बारे में जानकारी मिलके उनको काफी ज्यादा समझ में आई होगी बातें, और ये बहुत ही अहम बात है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा फूड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसी कड़ी में अभी एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे, कि जैसे कि हमने देखा है कि एलोपैथ में भी लोग यह करते हैं कि ज़रा सा बुखार आता है तो कुछ दो चार ऐसी गिना चुना दवाएं हैं जो जाके ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से, आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी दुकान होती है जहाँ आदमी जाके चूर्ण, कोई ऑयल या कोई ऐसे पेय पदार्थ होता है वो ले लेता है, लेकिन डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं। और उनको लगता है, ये बता दिया जाता है कि ये चीज़ फ़ायदा करेगी, ले लेते हैं। तो ये कितना इस चीज़ को आप सही मानते हैं?
देखो, आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं हमेशा के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, हर घर में लगभग हर आदमी जानता है आंवला। आंवला बहुत फ़ायदेमंद है, पर एक चीज़ और है कि अगर किसी को अंग्रेजी में, हिंदी में सफ़ेद दाग कहते हैं, अगर किसी को सफ़ेद दाग है तो उसे आंवला नहीं लेना चाहिए। किसी की अग्नि जो है बहुत मंद है तो उसे आंवला नहीं लेना चाहिए। आंवला पित्त शामक होता है, और पित्त की कमी से की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं, अगर आंवला आप ज़्यादा लेंगे तो बढ़ जाएंगे। ऐसे ही कोई भी चीज़ आप अगर ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं और आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो आपको नुकसान करेगी। आपको एसिडिटी है, आप दही खाएंगे आपको नुकसान करेगा। आप हाई ब्लड प्रेशर में नमक नहीं खाते, जैसे आप नमक खाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब है कि आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए डॉक्टर से। आपको अभी फीवर आया रात में, इमरजेंसी है, आपने एक डोलो खा लिया, ठीक है, पर डोलो के स्ट्रिप पे देखो आप, उस पर लिखा हुआ है कि इंजीरियस टू हेल्थ।
जी जी,
इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब कोई भी आप बुखार की दवा खाते हैं तो उस पर लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ या इंजीरियस टू लीवर, कुछ भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के
प्रिस्क्रिप्शन
के नहीं लेना चाहिए, कुछ भी, कोई भी दवा आप ले रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि हमारे रोजमर्रा की चीज़ों जैसा ही है, पर कई बार वो चीज़ें नुकसान भी करती हैं।
यानी सलाह बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल, बिना सलाह के कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए।
कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे, चूँकि अब हमारे आपके चलने का वक्त भी हो चला है।
बिल्कुल।
लेकिन जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाहेंगे कि आप बैठे हैं स्टैम्प रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है।
बिल्कुल।
तो इसको लेके आपको क्या लगता है कि जिस तरह के प्रोग्राम हम प्रसारित कर रहे हैं, इसके आने से गोंडा में कितना चेंज होने वाला है? इसको सुनने के बाद जो लोग सुनते हैं उनकी जिंदगी में कितना चेंजेस आएंगे?
जैसा कि पहले मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं अपने गांव से, अपने घर से काफ़ी गहरा जुड़ाव मेरा रहा। तो जब पहली बार एफएम चालू हुआ ये, तो उस समय मैं दिल्ली में था, मेरे किसी मित्र ने बताया कि अपने गोंडा में भी एफएम चालू हुआ है। तो जब मैंने पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड किया इसका, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और सुना, तो मुझे बड़ा जुड़ाव महसूस हुआ, बड़ा अपनापन सा लगा। ऐसा नहीं लगा, नॉर्मली हम कार में चलते हैं, किसी शहर में हैं तो वहाँ एफएम बजता रहता है, तो हम एफएम गाने सुनने के लिए लगाते हैं। पर जब हम ज्ञानस्थली को प्ले करते हैं, और खास करके जब हम गोंडा से बाहर हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने शहर में आ गए हैं, अपने शहर से जुड़ गए हैं।
क्या बात है, तो वो एहसास कराता है।
बिल्कुल बिल्कुल, अपनेपन का एहसास कराता है।
क्या बात है। और पहली बार इस तरह का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई। हर गेस्ट आते हैं, उनकी अपनी एक राय होती है, आपका ये है कि जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है जब स्पेशली आप बाहर होते हैं। ये बहुत अच्छा मुझे लगा जान के, और हमारी कोशिश भी है कि हमेशा लोग इससे जुड़े रहें, और हम ऐसे ही जनहित की जानकारी हमेशा इस तरह देते रहें कि लोगों में एक जागरूकता आए, एक ऐसा मंच हो जहाँ पे एक पसमानदा समाज आए, जहाँ पे हम एक दूसरे से बातचीत करें और बहुत सारी समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के माध्यम से ही सॉल्व कर लिया जाए। ये हमारी हमेशा की कोशिश रहेगी। आप डॉक्टर साहब आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमने आपके जीवन के बारे में बात की, आपने अपने जीवन के बारे में बताया, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, और साथ ही आयुर्वेद से जुड़ी हुई न जाने कितनी सारी हमने बातचीत की, न जाने कितने सारे हमने आपसे प्रश्न किए, जिसका आपने बखूबी उत्तर सरलता व सहजता के साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अदलान जी, मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी मीठी आवाज़ रेडियो पे अक्सर सुनते रहते हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि जब पहली बार मैंने सुना आपकी आवाज़ रेडियो पे, लगा था कि हम आप आमने सामने बैठ के बात करेंगे। आज मुझे बात करके बहुत खुशी हुई, और मुझे लगा कि आपकी आवाज़ रेडियो पे जितनी मीठी है वास्तव में भी उतनी ही मीठी है, कोई फर्क नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन इसका हम कोई दवा नहीं बताने वाले।
थोड़ा कम कीजिए, नहीं तो शुगर और बढ़ जाएगा।
लेकिन हम बता दें कि हम भी जो इस्तेमाल करते हैं वो आयुर्वेद की दवा है, जो कि नुकसान नहीं करने वाली।
बिल्कुल बिल्कुल,
तो वो बस सीधा सा प्रेम है और कुछ नहीं है आप सभी लोगों का। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जनहित की बात हमारी हुई। लोगों को बहुत फायदा इससे जरूर होगा। जो भी हमारे श्रोतागण इस वक्त सुन रहे हैं, वो इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो न जाने कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीने की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।
थैंक यू
सो मच। अपने श्रोताओं से कहेंगे कि हम सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। उनसे जुड़ी हुई कई बातें करेंगे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में भी जानेंगे। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
दिल के आईने में तुझको सजा लिया, जब से मैंने तुझको अपना बना लिया। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा,
तेरा चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा